ओम शांति। आज सवेरे सवेरे हम सभी ने 35 वर्ष पहले बाप दादा की जो मुरली चली उन अव्यक्त महावाक्यों को अच्छी तरह से सुना। जरूर सबका ध्यान गया होगा। वो समय और अभी के समय में क्या अंतर है। मीठे बाबा ने जिस प्रकार की प्रेरणाएं शिक्षाएं आज से 35 साल पहले दी, लग रहा था कि जैसे इस समय के अनुसार ये सभी बातें प्रैक्टिकल में होनी चाहिए। बाबा के अव्यक्त पाठ को हम सब ने इतने समय अनुभव किया, इतनी अच्छी पालना बाबा ने दी। आज बाबा ने पालना का स्वरूप समय अनुसार वर्तमान समय की लहर, चार प्रकार की लहर के ऊपर ध्यान खिंचवाया। सहज योगी जीवन, इसके सहज शब्द को लेकर के कई बच्चे बाबा के अलबेले हो जाते। सहज योग है इसलिए बहुत हल्के रूप से योग शब्द को यूज करके सहज कह के जब आए जैसे बैठे जैसे रहे योग में बहुत सहज, तो आज उस शब्द को बाबा ने इस शब्द में बहुत परिवर्तन किया। श्रेष्ठ योगी बनो, सहज योगी नहीं। श्रेष्ठ योगी किसको कहा जाता है? इन्हीं चार लहरों पर आज मैं आपका ध्यान खींचूंगा। चिंतन चला होगा आप सबका भी। सहज योगी तो हम सब जानते हैं भी, चलते फिरते कर्म करते खाते पीते बाबा की याद में रहते हैं, सहज है। लेकिन श्रेष्ठ योगी, वो श्रेष्ठता जिसमें एक बहुत अच्छी अलौकिक खुशी हो, बहुत ऊंचा नशा हो, बहुत अच्छे सम्मान में बैठ करके बाबा को याद किया जाए, साधारण रूप से नहीं। ऐसे लगे जैसे ये तपस्या के अंदर योगी लोग बैठे हुए हैं, तपस्वी आसन पर बैठते हैं। बाबा ने वो हठ आसन तो हमारे बंद करा दिए, पद्म आसन में नहीं बैठना, इस आसन में नहीं बैठना, जैसे बैठ सकते हो बैठो, लेकिन बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन का आसन देना चाहिए। अच्छे अच्छे नशे और खुशी के संकल्प लेकर के बहुत ऊंचे सम्मान में स्थित होकर के फिर बाबा को याद करें, दिखाई दे किसी की याद में खोया हुआ है। योगी जीवन है इनकी, तो वो श्रेष्ठता जब हमारी चलन से बोल से कर्म से दिखाई देती तब श्रेष्ठ योगी जीवन की लहर दिखाई देगी। तो वर्तमान समय के अनुसार हम सब बाबा के बच्चे एक श्रेष्ठ योगी हैं। दुनिया वाले जो योग कर रहे हैं वो तो शारीरिक क्रियाएं हैं, शारीरिक व्यायाम हैं, कोई ध्यान भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, लेकिन जिस स्थान पर पहुंचना चाहिए, जिसकी स्मृति में रहना चाहिए, उसकी पहचान ही नहीं है। योग शब्द जो दो शब्दों को जोड़ता है, दो का मिलन है, जिसमें आत्मा परमात्मा के साथ मिलन का अनुभव करे, उस योग में कोई त्राटक करता है, कोई किसी चीज पर ध्यान करता है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं, लेकिन इतना श्रेष्ठ योग जिसमें अपने स्वस्वरूप का चिंतन है और स्वस्वरूप के चिंतन के साथ साथ बाबा जो है जैसा है उनके स्वरूप को पहचान के साथ अनुभव के साथ मिलन है, ये श्रेष्ठता हमारे योग की है। जो राजयोग बाबा ने हम सबको सिखाया है और रोज अभ्यास करते हैं, इसमें जब आत्मा इस शरीर से डिटैच होती है, न्यारेपन का अनुभव करती है। योग की संपूर्ण स्टेज क्या है? देह और देही का, शरीर और आत्मा का अलग अनुभव होना। पहले चिंतन है, ऐसे नहीं हम चिंतन शून्य करके बैठते हैं, लेकिन चिंतन करते हैं कि मैं एक शुद्ध श्रेष्ठ आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूं। अपनी सर्व शक्तियों को समेट करके जब एक जगह एकाग्र कर लेते हैं, फिर हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। तो ये योग जो बाबा ने हम सबको सिखाया, इस श्रेष्ठ योग का नशा हो और हर एक ब्राह्मण आत्मा ऐसे श्रेष्ठ योगी बने जो ये लहर फैले, पहली बाबा की विशेष प्रेरणा रही कि अब श्रेष्ठ योगी जीवन की लहर फैलाओ। दूसरा बाबा कहते हैं महातपस्वी, महातपस्वी मूरत की लहर फैले। एक है तपस्या और एक है महातपस्या, जिसमें अंग अंग भी तपे हुए हों, कोई भी कर्मिंद्रियों की चंचलता न हो, इतनी स्थिरता और एकाग्रता हो जो लगे सचमुच ये महातपस्वी हैं। केवल थोड़ा समय तपस्या कर रहे हैं फिर हलचल में आ गए। महातपस्वी आत्माएं तन से भी स्थिर, मन से भी स्थिर, बुद्धि भी स्थिर, उनकी भावनाएं भी स्थिर, एकाग्र। जब ऐसी एकाग्रता संपन्न बाबा की याद रहती है, तपस्या के रूप में बाबा ने त्याग और तपस्या के दो अर्थ बहुत सुंदर सुनाए हैं। त्याग है देहमान का, स्थूल चीजों का, साधनों का, संबंधों का त्याग नहीं, लेकिन त्याग है बुराइयों का, कमी कमजोरियों का, देह अभिमान का। और जब इस त्याग को हम दिल से करते हैं, उससे किनारा कर लेते हैं, तो हमारी आत्म अभिमानी बनने की तपस्या शुरू हो जाती है। और जो जितना समय आत्म अभिमानी स्थिति में रहता है वो महातपस्वी है। इसलिए हम सबको इस बात का ध्यान देना है, क्योंकि बाबा ने आगे अंडरलाइन एक शब्द किया है, अभी तक भी वो चेंज नहीं हुआ है, 35 साल हो गए, जिसमें बाबा ने कहा अभी तक भी लोग भेंट करते हैं, ये भी ऐसे हैं, ये भी ऐसे हैं, ये संस्था भी ये अच्छा ज्ञान देती, ये भी अच्छा देते हैं, ये अलग हैं, ये कुछ नया ढंग से और नया ज्ञान दे रहे हैं, नई जीवन बन रही है, नई दुनिया बन रही है, इससे बाबा सोचते हैं ये भेंट करना ये बंद कर दें। जैसे सब हैं ऐसे हम नहीं हैं, हम अलग हैं। तो बाबा ने इस बात को और अंडरलाइन किया कि केवल भाषण करने वाले नहीं बनो, वाणी से सेवा करने वाले नहीं बनो, वाणी से प्रवचन देने वाले, लेक्चर देने वाले तो हमसे बड़े अच्छे अच्छे होशियार लोग हैं, आप बच्चे भाषणा दो। जो दीदी को आज याद किया बाबा ने, दीदी का एक शब्द था, दीदी मनमोहिनी को कईयों ने देखा है, बैठे हैं कुछ लोग, हमने भी दीदी की 11 साल पालना ली। दीदी कहती थी दादी प्रवचन करे, दादी भाषण करे, दादी मुरली सुनाए, मैं सबको भाषणा दूंगी। और ऐसी भाषणा देती थी जो अपनी सखी बना लेती, अपना सखा बना लेती, बहुत स्नेह की पालना वो भाषणा कहलाती। बहुत स्नेह युक्त संबंध में आकर के उसके हाल चाल को पूछ करके, उसको कुछ खिला पिला के, बहुत स्नेह दे करके, एकदम भाषणा दे करके, अपनेपन की फीलिंग, इसको कहते भाषणा। और ऐसी भाषणा दे देती थी जो सबके दिल में वो छप जाती थी। आज हमारे पास कोई भाषणा देने वाले नहीं बचे, दादियां तो गिनी चुनी हैं भाषणा देने के लिए। जानकी दादी कहती है मैं भी सबको भाषणा देती हूँ, जो आ जाता उसको भाषणा दादी से मिलती है, लेकिन बहुत कम लोगों को मिलने का भी भाग्य मिलता। बाबा चाहता है कि ये लहर फैले, इस लहर से लोगों को अनुभव होंगे ईश्वरीय परिवार की भाषणा, ईश्वरीय स्नेह की भाषणा मिले लोगों को, वाइब्रेशन मिले, महसूसता आए, जैसे इस स्थान से महसूसता आती है। मैं राजयोग में, राजयोग शिविर में जो भाई बहने आते हैं, बहुतों से मिलना होता है, सबसे एक बात पूछता हूं, यहां आपको क्या भाषणा आई है? अपने परिवार की भाषणा आई है, अपनेपन की भाषणा आई, क्या कोई संस्था में आए हैं, कोई अलग स्थान पर आए हैं, कोई मठ पंथ में आए हैं? बाबा के घर की एक विशेषता है, जो आता है उसको ये फीलिंग बाबा के घर में अवश्य आती है, महसूस करते हैं कि अपना है, अपनेपन की फीलिंग आती है, क्योंकि सब खुला हुआ है, सब जैसे बच्चे घर में आए हैं, अपने आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक बहन कहती है जिससे भी पूछो, मैं एक साथ टीचर नहीं आई है, लेकिन किसी से भी बात करो तो ऐसे लगता है ये अपने हैं, ऐसे प्यार से मिलते हैं, ऐसे प्यार से बात करते हैं, कोई चीज पूछो कहाँ मिलेगी, कहाँ जाना है, वो सहज बताएंगे भी, गाइड भी करेंगे, कभी साथ में भी चल देंगे, चलो हम बता के आते हैं। ये भाषणा है, प्यार, प्यार से, स्नेह से कोई को अपनत्व की, अपनेपन की पालना देना, यही भाषणा कहलाता है। तो ऐसी भाषणा हमारी दादियों ने, दीदी ने तो सबको दी, जो समीप आ जाए, जिसको दीदी के समीप बैठने का भाग्य मिल गया, उसको इतनी श्रेष्ठ भाषणा मिली जो अपनेपन के चुंबक की तरह उसको खींच लिया, भूल नहीं सकता उनकी पालना को। लिया जगदीश भाई आपने पालना दीदी की? लिया सजनी बहन हैं, 3-4 लोग बैठे हैं, रवि भाई बैठे हैं, हम सब थे उस समय, अनुभव करते थे, क्योंकि मेरा तो रोज भी दीदी से मिलना होता था। दीदी मुरली के प्रश्न उत्तर लिखती थी क्लास में, कहती थी मुरली दादी ने जब पूरी किया तो क्लास के बीच में ही ऐसे अपनी गद्दी घुमा लेती थी, बैठ जाती थी और सबसे प्रश्न करती थी कि अभी हम सब बैडमिंटन खेलेंगे, मैं प्रश्न पूछूंगी, जो उत्तर देगा उसको डबल टोली मिलेगी और जो ठीक उत्तर नहीं देगा उसकी टोली बंद। मुरली के बाद टोली मिलती थी ना, तो बहुत रमणीकता से, ऐसा स्नेह से बाबा की मुरली को स्पष्ट करके सुनाना, बताना, जो ऐसे लगता था दीदी की भाषणा मिल रही, पालना मिल रही। जब भी दीदी के साथ बैठ जाओ, बहुत अच्छी ज्ञान की ही रूह रिहान करना और कोई बात नहीं करना, पर चिंतन पर दर्शन नहीं, कोई की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं। ऐसे नहीं मैं उसकी बात सुना दिया, अगर सुना दिया तो कहेगी तुम यहां बैठो, मैं उसको अभी बुलाती हूं। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं, क्या उसको बिठा दिया और जिसकी बात उसने किया उसको बुला लिया, बेचारा अगर झूठ बोला होगा तो डर जाएगा। इसलिए कोई को बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। कोई क्लास में ना आए, योग में ना आए, मुरली में ना आए, और दीदी की नजर अगर पड़ गई तो बस फिर पालना और भासना दोनों मिल जाती थी। बहुत प्यार से बुला करके पूछना, तबीयत ठीक है, नाश्ता किया, सैर करने गए थे, हाँ दीदी गए थे, नाश्ता भी किया, तबीयत ठीक है, ये सब है ठीक है, फिर आज क्लास में क्यों नहीं आए थे। अब उसको क्या पता दीदी हमारे पे इतनी नजर रखती है, एक एक पर इतनी नजर थी कि अगर क्लास और योग में कोई नहीं आया तो ऐसा दूसरा दिन नहीं बीतता था। उसी दिन 9 बजे के अंदर अंदर ऑफिस में दीदी बैठी और सबको बुलाना शुरू कर दिया, इतना ध्यान रखती थी, बहुत प्यार से सिखाती, ऐसे नहीं डांट लगाना, बुलाया अगर डर जाता था वो, लेकिन साथ में बिठा करके सब ऐसे हाल चाल पूछ करके फिर कहती थी, देखो हमारी उन्नति के ब्राह्मण जीवन के दो ही विशेष पुरुषार्थ हैं, एक है मुरली, एक है अमृत वेले का योग, बाकी तो सेवा ही कर रहे हो सब, अगर ये दोनों चीजें भी नहीं कर रहे हो तो बाकी क्या कर रहे हो, फिर उन्नति कैसे होगी। तो एक बड़ी रमणीक बात कभी कभी कह देते थे, देखना यहां भी कई हैं जो सफेद ड्रेस में नौकर की तरह काम करते हैं, पैसा नहीं लेते, भोजन करते हैं, ड्रेस लेते हैं, कपड़े लेते हैं और सेवा करते हैं, अपनी उन्नति से कोई ख्याल नहीं, अपनी उन्नति के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं, तो कौन है वो सफेद ड्रेस वाले नौकर। इतना ध्यान खिंचवाती थी कि कोई भी समर्पित बाबा का बच्चा अमृत वेला और मुरली क्लास अगर नहीं करता है तो ब्राह्मण कैसा, बहुत प्यार से रहम से जैसे सिखा करके फिर टोली खिला के बहुत प्यार करके भेज देते, ध्यान रखना आगे, ऐसे अटेंशन, ये पालना मिली, ये भाषणा मिली, जो आज बाबा ने कहा पालना के 3-4 स्वरूप बताए कि भाषण करने वाले, कोर्स कराने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप पालना दो और पालना में उसकी शक्तियों की स्मृति दिलाओ, उसकी विशेषताओं को स्मृति में ले आओ, उसके उमंग उत्साह को बढ़ा दो, ये है पालना। जो आपके समीप संबंध में आए, सिर्फ खिलाना पिलाना है पालना नहीं है, लेकिन उसकी जो आंतरिक शक्तियां हैं, जो उसकी विशेषताएं छिपी हुई हैं, उसको बढ़ा देना, उसको इमर्ज कर देना, उसको स्मृति में दिला देना कि देखो आप इतने महान हो, इतने श्रेष्ठ हो, क्या से क्या कर सकते हो। हमारे दादा थे, विश्व रतन दादा के साथ एक आनंद सौ दादा थे, आनंद सौ दादा कभी कभी बैठ जाते थे, ये करो, ये नया होना चाहिए, ये नया होना चाहिए, दीदी के लिए आज बाबा बोल रहे थे कि दीदी को आता है, क्या नया किया, और नया करो, और नया करो, और नया करो, ऐसे दादा आनंद सौर जब कभी हम लोगों के साथ बैठ जाते, तुम लोग जवान जवान लड़के इकट्ठे हुए हो, ये नया करो, ये नया करो, ये नया करो, रोज कुछ न कुछ बोलता था, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, रोज नई सेवा की प्लानिंग चलती, अंदर अंदर विचार चलते, ऐसे भगवान गीता के भगवान को ऐसे सिद्ध करना है, ऐसे ये करना है, ऐसे ये पॉइंट निकालना, तो एक उमंग उत्साह दिला देना, एक उनकी विशेषताओं की स्मृति इमर्ज हो जाए, शक्तियां इमर्ज हो जाए, ऐसी पालना दो। तो एक महातपस्वी का वातावरण बन जाए, वो लहर बन जाए, साक्षात्कार मुहूर्त की लहर अब जरूरत है, जो वर्तमान समय की, उसकी बहुत सुंदर विधि बाबा ने सुनाई, किसने अंडरलाइन किया, साक्षात्कार मुहूर्त बनने की विधि मैं आपको सुनाता हूं। मेरा ध्यान जो गया मुरली पर, जैसे ब्रह्मा बाबा को पहले पहले साक्षात्कार हुए तो उनके अंदर आया कौन था, क्या था, कैसे भले जैसे बहुत विचित्र लगा, ऐसे ही हर आत्मा को भी हमारे द्वारा वो अनुभूतियां हों, साक्षात्कार हों, उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई, त्रिमूर्ति स्वरूप की स्मृति में रहो। त्रिमूर्ति स्वरूप, जिसमें बाबा ने एक मंदिर का मिसाल देके कहा, जैसे मूर्ति में शिव बाबा के शिवालय में शिवलिंग में कहीं कहीं पर एक लिंग के साथ साथ एक चेहरा भी दिखा देते, उसमें एक शक्ति का रूप भी दिखा देते। इस समय साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए हम सब बच्चों को ये तीन स्वरूप, एक मैं शिव शक्ति, मैं एक आत्मा हूं, और साथ साथ बाप और दादा मेरे साथ कंबाइंड है, ये त्रिमूर्ति। अब समय है इस योग को और बढ़ाने का, इस अभ्यास को बढ़ाने का, इस स्मृतियों को बढ़ाओ। ऊपर बाबा के पास हम जाते हैं बुद्धि बल से, कुछ समय टिकते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। लेकिन अगर हम कर्म में चलते फिरते अभ्यास करें कि बाप दादा को मैंने आवाहन किया, दोनों बिंदियां हैं अभी तो, कोई स्थूल में रूप नहीं बढ़ा, और वो ज्योति बिंदु बाप दादा दोनों स्वरूप में आकर के जैसे मुझ आत्मा के साथ भ्रकुटी के आसन पर बैठ गए, त्रिमूर्ति साक्षात्कार लोगों को हूं, अनुभव हो कि अकाल तख्त पर बैठी हुई आत्मा, ये जो बोल रही है ये शरीर नहीं आत्मा बोल रही है, और ऐसे भी अनुभव हो कि इसे बुलवाने वाला कोई दूसरा लग रहा है, ये नहीं खुद बोल रहा है। कई बार लोगों को अनुभव होता है कि जो आप बोल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, लगता है कोई ऊपर से बोल रहा है, ऊपर से नहीं बोल रहा है। लेकिन ऐसे साथ में लेकर के हम योग भी करें, कई बार बाबा नहीं कहते हैं अभी कुछ समय से लहर चली अव्यक्त बाबा की, तुम मुझे अपने दिल में बिठा लो। अब दिल ये तो है नहीं, ये तो शरीर का अंग है, लेकिन आत्मा जो उसकी भावनाएं हैं मन के अंदर, वो मन की भावनाएं ही दिल कहलाती हैं। और जब दिल साफ है, स्वच्छ है, कोई के विषय में कुछ गलत नेगेटिव नहीं है इसके अंदर, स्वच्छ साफ मन के साथ दिल है, और उस दिल में बाबा की याद बसना, यही बाबा को बिठाना है। तो जब हम अपने साथ बाप दादा का आह्वान करते हैं, तो जैसे दादी के तन में बाप दादा जब आते हैं, स्थूल नेत्रों से तो दिखाई नहीं देता कुछ, शरीर तो बाप दादी का ही दिखता है, लेकिन जब बाबा की प्रविष्टता होती है तो कई आत्माओं को जो अव्यक्त स्थिति में रहते हैं, दूर बैठे भी वो लाइट का अनुभव करते हैं। दादी के शरीर में भी चेहरा चेंज होता है और लाइट लाइट दिखाई देने लगती है। शिव बाबा निराकार जब ब्रह्मा के तन में अव्यक्त रूप में आते, तो वो भी अव्यक्त लाइट, वो लाइट का शरीर, और बाप दादा दोनों आकर के प्रवेश होते हैं, अकेले शिव बाबा नहीं आता। जब बाप दादा आते हैं तो दादी का चेहरा बदल जाता है। अभी तो दादी कहती है मुझे बाबा सुलाता नहीं है कुछ समय से, लेकिन पहले तो जब ट्रांस में चली जाती थी तो ये आत्मा के संस्कार मर्ज हो जाते, और फिर बाप दादा के संस्कार इमर्ज होकर के बाबा सब बच्चों से मिलन मनाते। वो जो पाठ चला, जो हम लोगों ने 45 साल लगभग देखा होगा अव्यक्त बाबा के, उस पाठ को जिसमें दादी गुम है और बाप दादा का पाठ चलता है, क्योंकि जब हम बाबा की मुरली तैयार करके दादी जी को देते थे तो दादी जी उसको पढ़ती थी, और पढ़ने के बाद उनकी स्मृति आ जाती थी, हाँ ये बाबा ने कहा, ये बाबा ने कहा, जैसे वो सोई हुई आत्मा के सामने बिल्कुल मर्ज है और बाबा बोल रहे हैं उनके तन में। तो उस समय वो बातें पॉइंट्स याद नहीं रहती, लेकिन बाद में पढ़ना पड़ता है। लेकिन 3-4 साल से जो बाबा का पाठ थोड़ा सा चेंज हुआ, उसमें दादी कहती थी मैं भी सुनती हूँ साथ साथ बाबा क्या बोलते हैं सबसे, और दादी की आवाज भी चेंज नहीं होती। इसलिए बाप दादा का जो पाठ चला त्रिमूर्ति होकर के चला इस समय, अभी वो त्रिमूर्ति स्टेज हम सब ब्राह्मण आत्माओं की बननी चाहिए। हम मर्ज नहीं होंगे, बाप दादा को बुलाएं तो ऐसा नहीं हम सो गए, हम भी जागृत अवस्था में हैं। अपने अकाल तख्त पर बैठी हुई मैं चैतन्य आत्मा हूं, और वो दोनों पवित्र शक्तियां परम पवित्र शिव बाबा अगर हमारे साथ आ गया, तो विचार कितने शुद्ध होंगे, भावनाएं कितनी अच्छी होंगी, कितनी ऊंची होंगी, और जिससे बात करेंगे उसको भासना आएगी कि मुझे कोई प्राप्ति हुई। वो साक्षात्कार की लहर जब ब्राह्मणों के परिवार से, हमारे इस ईश्वरीय परिवार से लोगों को होने लगे, इतनी ऊंची स्थिति में रह करके हम किसी को कुछ कहें या सचमुच भगवान इनके द्वारा मुझे मिल गया, वासना एक, अब वो लहर आनी चाहिए। साक्षात्कार एक है, अपने घर बैठे उनको कुछ न कुछ अनुभव हो। जब हम ऊंची स्थिति में, योग की अच्छी स्थिति में रहेंगे तो लोगों को घर बैठे भी अनुभव होंगे, लेकिन जो हमारे सामने आए आत्माएं, हम अपनी ऊंची स्थिति में रह करके उनको बाबा का अनुभव करा दें, उनको देह से डिटैच कर दें, अब इस अभ्यास की जरूरत है। इससे साक्षात्कार की लहर शुरू होगी, और जब तक साक्षात्कार की लहर नहीं शुरू होती तब तक प्रत्यक्षता नहीं होती है। मैं दुखी हुई है, हम देख रहे हैं सब, और बिना प्रत्यक्षता के परिवर्तन नहीं, विनाश नहीं होगा। इसलिए परमात्मा बाबा हम सबको कह रहे हैं, बच्चे ये समय अभी इस लहर का है, इस लहर में आ जाओ, त्रिमूर्ति स्वरूप में रहने का अभ्यास करो, और त्रिमूर्ति बन करके अपनी दृष्टि से, अपने बोल से, अपनी स्थिति से अकाल तख्त पर बैठ करके वाइब्रेशन दो, साक्षात्कार लोगों को हो जाए। इस सेवा की अभी बहुत बहुत जरूरत है। और चौथी लहर जो बताई वो है रूहानियत की लहर, क्योंकि कई स्थानों पर अभी भी लौकिकता है, लौकिक वातावरण है, साधारणता है, हंसना बहलना बातें करना, बहुत मुख का कन का रस आत्माओं को आकर्षित करता है, कन रस, मुख रस, मन रस, सब रस आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए एक रस वातावरण नहीं बन पाता। यदि सभी स्थानों पर बाबा के बच्चे इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, ये लहर हो कि मुझे खुद भी रूहानियत में रहना है, रूहानियत में रहना माना हमारी नियत के अंदर ही ये है कि मैं आत्मा, ये आत्मा है, मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूं, जिसमें कोई भी जोर की आवाज न हो, हंसी मजाक न हो, बाह्य मुक्ता न हो, लौकिकता न हो, व्यक्त और व्यर्थ बातों की चर्चा न हो, उस वायुमंडल को कहते हैं रूहानियत से संपन्न वायुमंडल। और अगर ऐसा सभी स्थानों पर बने, मधुबन में भी और हमारे सभी सेंटर्स पर, हर एक लक्ष्य रखे मुझे रूहानियत में रहकर वार्तालाप करनी है, कर्म और व्यवहार में आना है, कोई भी आवाज में आकर के कोई कार्य नहीं करना है, आप देखें इससे बहुत सुंदर एक लहर बन जाएगी। बाबा कहते थे, कुछ समय पहले बाबा ने कहा है, एक दिन ये पांडव भवन, मधुबन के लिए कहा था, फरिश्तों की दुनिया बन जाएगी, ये किला बन जाएगा। हम सभी भी जो इस स्थान पर निवास करते हैं, अगर इस रूहानियत को बहाएं, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने का अभ्यास करें, और हर आत्मा को अकाल तख्त पर विराजमान चमकती हुई मणि के रूप में देखें, तो ये जो वातावरण बनेगा, ये जो लहर बनेगी, इस लहर से सबको हमारे फरिश्ते स्वरूप का अनुभव होगा, लाइट स्वरूप का अनुभव होगा, लोग देह और देह की दुनिया को सहज भूल जाएंगे। जब तक हमें ही देह आकर्षित कर रही है, संबंध आकर्षित कर रहे हैं, कर्म इंद्रियों की आकर्षण हो रही है, तब तक रूहानियत की लहर वातावरण में नहीं फैलती। इसलिए बहुत अटेंशन दे करके आज जो बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया है, हम सब इन चारों प्रकार की लहर को क्रिएट करें, नहीं है तो बढ़ाएं, और बढ़ा करके अपने इस स्थान को, अपने शांति वन को ऐसा सुंदर स्थान बनाएं, जो आने वाली आत्माएं यहाँ पर अनुभव करें, सचमुच हम तो एक फरिश्तों की नगरी में, अलौकिक दुनिया में आ गए हैं। अनुभव करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा अनुभव करके जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी भी अगर साधारणता है, हलचल है, तो भी उसका भी नोट करके जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि हम सब ऐसा अभ्यास करें। और जो बाबा ने लास्ट में कहा है कि बहुत रमणीकता से भिन्न भिन्न रूप से योग अभ्यास करके मन दुरुस्त स्थिति का अनुभव करो। तन भले थोड़े बहुत खिटपिट हरेक के करते हैं, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मन की स्थिति इतनी अच्छी हो, अभ्यास करते करते, ड्रिल करते करते, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करके बहुत रमणीकता से, बोर ना हो जाए। एक जैसा योग नहीं करना, क्योंकि एक जैसा करेंगे तो बोर हो जाएंगे। इतनी वैरायटी योग की बाबा ने सिखाई है, मैं तो कभी कभी सोचता हूं कितनी वैरायटी से हम सब योग कर सकते हैं। आज 7 आत्मा के निजी गुण हैं, कभी शांत स्वरूप स्थिति का, कभी प्रेम स्वरूप स्थिति का, कभी आनंद स्वरूप स्थिति का, कभी सुख स्वरूप स्थिति का। एक दिन एक स्थिति का अनुभव करें तो वैरायटी और नवीनता स्वतः हो जाएगी। 5 स्वरूपों की ड्रिल बाबा ने बताई है। एक ड्रिल अगर यथार्थ विधि पूर्वक की जाए, शाकाहारी याद में बैठो, कम से कम आधा घंटा तो ऐसे निकल जाएगा। अपने भाग्य का चिंतन करो, प्राप्तियों का चिंतन करो, भाग्य विधाता ने कितनी प्राप्तियां कराई हैं। अमृत वेले से रात तक की अगर एक बार लिस्ट निकाल के देखो, मैंने एक बार निकाली थी, बाबा आपने इतनी प्राप्तियां कराई, उठाते आप हो, बिठाते आप हो, खिलाते आप हो, पढ़ाते आप हो, इतनी संगम पर प्राप्तियां हम सब ब्राह्मणों को हुई हैं। कितना बड़ा भाग्य है जो भगवान की पालना गुप्त रीति से हम बच्चे ले रहे हैं, दिखाई लोगों को नहीं देता, लेकिन सचमुच इतनी बेफिक्र स्थिति, इतनी निश्चिंत स्थिति हम सबकी बनाई है, जो कहां दुनिया जा रही है और कहां हम हैं, नशा चढ़ता है क्या? बाबा ने बनाया है जीवन, कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं, कोई चिंतन चिंता नहीं, बेफिक्र बेगमपुर के बादशाह है। लेकिन वो स्मृति, वो नशा रहे कि बाबा ने क्या भाग्य दिया है, कितनी प्राप्तियां कराई हैं, अखुट खजाने दे दिए। ज्ञान का भी इतना अखुट खजाना है, चिंतन करो मस्ती चढ़ जाती। एक एक बात देखो कितनी स्पष्ट सुनाई है, कितने रहस्य युक्त बताई है, कितने राज उसके अंदर भरे हुए हैं। बाबा की मुरलियों का चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो, खुशी के संकल्प करो। कईयों ने आज पूरा प्रश्न किया ना बाबा से, बाबा योग में बैठते नींद आती है, तो बाबा ने क्या कहा? नींद को भगाने की युक्ति है आपके पास, भगाओ, लेकिन आप शांत स्वरूप स्थिति में ऐसे आके बैठ जाओगे तो क्या चाहिए आत्मा को? नींद तो आएगी, शांति चाहिए। उसको अच्छा मनन करो, चिंतन करो, उसमें खुशी के अंदर आ जाओ, प्राप्तियों की स्मृति में आ जाओ, नवीनता भी होगी और आपकी नींद और आलस्य अपने आप भाग जाएगा, सुस्ती भाग जाएगी। लेकिन ऐसे सहयोगी बन के नहीं बैठो, बैठ गए जैसे गर्दन ऐसे डाल दी और फिर थोड़ी देर शांत स्वरूप स्थिति में बैठे और सो गए, प्राप्ति क्या हुई? एक घंटा पौना घंटा बैठ करके अगर हम खुशी से नशे से संपन्न बन करके नहीं उठे तो योग की श्रेष्ठता क्या है, योग की नवीनता क्या है? तो हम सभी बाबा के बच्चे ऐसी नवीनता संपन्न योग करके संगम योग पर ये सब भाग्य जो मिले हैं इसका चिंतन करके अपनी प्राप्तियों की लिस्ट जरूर बनाओ। बहुत सारी प्राप्तियां अमृत वेले से रात सोने तक हर चीज हम सबको प्राप्त हुई। इसलिए एक बार बाबा ने मुरली चलाई थी, बच्चे देवताओं के लिए तो कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, आप ब्राह्मण बच्चे कहो अप्राप्त नहीं कोई शक्ति, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मण आत्माओं के खजाने में। बाबा ने सबको सब प्रकार की सुविधाएं, सब प्रकार के स्थूल सूक्ष्म साधन, ज्ञान का खजाना, खुशी का खजाना, शक्तियों का भंडार दे दिया। सचमुच इसका चिंतन करो, कितनी मस्ती चढ़ेगी, कितना नशा चढ़ेगा, मौलाई मस्ती, बाबा कई बार ये शब्द यूज करते हैं, मौलाई मस्ती चढ़नी चाहिए। जैसे मौला कोई एकदम नशा चढ़ जाए, मस्ती चढ़ जाए, तो हम सबको अलौकिक मस्ती में, अलौकिक नशे में रह करके अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा लोगों को ज्ञान देना है। श्रेष्ठता दिखाई दे, साधारणता नहीं, जैसे सब हैं ऐसे ये हैं, कॉन्ट्रास्ट ऐसा न हो, सबके साथ हमें न मिला दें। तो जब हमारे चलन में, हमारे व्यवहार में, हमारी स्थिति में निश्चिंतता होगी, एकाग्रता होगी, स्थिरता होगी, परिस्थितियों के बीच में जब अडोलता होगी, तब लोगों को लगेगा ये अलग है। कितनी परिस्थितियां दुनिया के अंदर है, कितनी हलचल है, कितनी महंगाई है, कितनी सारी बातें हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं है। कैसे ये अलौकिकता आएगी, ये बताएगा कि इनकी क्या जीवन है। तो ऐसी साधारणता न रहे, ऐसा अटेंशन रख करके अब हम सबको, बाबा के सब बच्चों को संगठित होकर ये लहर फैलानी है। इसके लिए कुछ अटेंशन दो, चार्ट बनाओ, पहरा रखो अपने ऊपर, ताकि ऐसी लहर बने जो हम सब एक लहर में लहराएं, अलग अलग ग्रुप नहीं, एक लहर में इतने बड़े संगठन में आ जाएं कि श्रेष्ठ योगी हैं, ये महातपस्वी हैं, ये रूहानियत से संपन्न हैं, और ये साक्षात्कार करने और कराने वाली आत्माएं हैं। तो इसकी अभी वर्तमान समय आवश्यकता है, और हम सब इस देश में नंबर ले सकते हैं ना, करेंगे सभी रेस, मैं शांतिवन वाले सेवाधारी, अब ऐसी रेस करके दिखाओ, ठीक है। चलो, ओम शांति।
शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए, परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए, सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। जैसे बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है सहयोग योग है साधना। सुख का ये आधार है अंतर की ज्योति है जगानी। अब हमको जन जन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। शुभ संकल्पों के दीप जलाए।